प्रकरण दो, रीति ग्रंथकार कवि। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। एक, चिंतामणि त्रिपाठी। ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और चार भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम तीन तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामणि और मतिराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले, तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्मकाल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कुलकल्प तरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पेंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। और काव्य विवेक, कवि कुलकल्प तरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये पांच ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्त और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्व हैं। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने देखिए। यही उदाहरत है तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहू जम घेरे, राजे रमा रमनी उपधान, अभय बरदान रहे जननेरे, है बलभार उदंड भरे, हरि के भुज दंड सहायक मेरे। इक आज मैं कुंदन बेली लखी, मणि मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंदु तहां, अरविंदन ते मकरंद झरे, उत बुंदन के मुकतागन वे, फल सुंदर भय पर आनि परे, लखी यो दुति कंद अनंद कला, नंद नंद शिलाद्रव रूप धरे, आखिन मुंदिबे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावे, केहू कहू मुस्काय चिते, अगर आय अनुपम अंग दिखावे, नाह छुई छल सो छतिया, हसी भौह चढ़ाए अनंद बढ़ावे, जोबन के मद मत ततिया, हित सो पति को नित चित्त चुरावे। दो, बेनी। ये 80 के बंदी जन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्षिक और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुकुता ठहरे, फहरे पियरो पट बेन इते, उनकी चुनरी के झबा झहरे, रस रंग भिरे अभिरे हैं तमाल, दो रस ख्याल चहे लहरे, नित ऐसे स्नेह सो राधिका श्याम, हमारे हिय में सदा बिहरे। पृष्ठ संख्या 135। कवि बेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कुकनरी, छहरे बिजुरी छिति मंडल छय, लहरे मन मैन भबूकनरी, पहिरो चुनरी चुनी के दुलही, संग लाल के झूलहु झूकनरी, ऋतु पावस यो ही बितावत हो, मरिहो फिर बावरी हुकनरी। तीन, महाराज जसवंत सिंह। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकार च्युत कर दिए गए थे। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई, वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हुआ। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राक कथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे, वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखा है वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दो दोहे नीचे दिए जाते हैं। अत्युक्ति। अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दानते भय कल्प तरु भूप। परस्ता अपनोति, परस्त जो गुण एक को और विषय आरोप, होई सुधाधर ना ही यह वदन सुधाधर ओप। ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों के स्पष्ट छाया हैं। अत्युक्तिरद्भुतात् तथ्य शौर्योदार्यादि वर्णनम त्वयि दात्री राजेन्द्र याचका कल्पशाखिनः। परस्तापनुहुति यत्र धर्ममात्रं निषिध्यते नायं सुधांशु किं तर्हि सुधांशुं प्रेयसि मुखम्। पृष्ठ संख्या 136। भाषा भूषण पर पीछे तीन टीकाएं रची गईं। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे वंशीधर ने संवत 1792 में बनाया, दूसरी टीका प्रताप शाही की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। 4. बिहारी लाल। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक अशर्फी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 500 टीकाएं रची गईं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरति मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाही थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सच्चाई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तबक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही पृष्ठ संख्या 137 वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, तत्सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे वेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहनी हसे दैन कहे नटी जाई। नासा मोरी नचाई दृग करी कका की सौह, कांटे सी कसके हिये गड़ी कटीली भौह। ललन चलन सुनी पलन में असुआ झलके आई, भई लखाई न सखिन हो झूठे ही जमुहाई। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि के अर्थ में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई। जैसे इन दोहों में, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास, छाले परिभय के डरन सके न हाथ छुआई, झिझकति हिय गुलाब के झवा झवावती पाई, इत आवति चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ, सीरे जतनने शिशिर ऋतु सही बिरहिनी तनताप, बसिबे को ग्रीष्म दिनन पर्यो परोसिनी पाप, आले दे आले बसे जाड़े हु की राती, साहस कह के नेह बस सखी सबर ढिग जाती। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। डीठी परोसिनी ईठ व गह जुगह सयान, सबै संदेशे कही कहो मुस्काहट मेहमान, नए बिरह बढ़ती बिथा खरी बिकल जिय बाल, बिलखी देखी परोसिन्यो हर्षी हंसी ती काल। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चली गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी हैं। पृष्ठ संख्या 138। दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिय दई नहीं या रीति। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग अतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दो एक जगह व्यंग अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग है। करे चाह सो चूटकी कै खरे उड़ा है मैन लाज नवाए तरफरत करत खूंद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्मस्पर्शनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन व जात अजौ वह वा जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें बहुत सी नीति संबंधनी है। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र भी प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह तउ प्रकाश करे तितो भरिय जितो स्नेह। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराए नर यह पाए बौराए। तौपर वारो उर्बसी सुने राधिके सुजान तू मोहन के उर्बसी वह उर्बसी समान। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहित भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना उपस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गणंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मर के लिए समर कके ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे। जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण अपसक्रोण भी कहते हैं। अच्छ साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्ध का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटखती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि पचासों शब्द उनकी समझ में न आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सत्सई नहीं लिखी है, पर नक्षिक नायिका भेद षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीति काल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। पृष्ठ संख्या 139। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि गुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विकार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। दूसरी बात यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनके श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। 5. मंडन। ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे और संवत 1716 में राजा मंगत सिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित्व सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके पांचों ग्रंथों का पता लगा है, रस रत्नावली, रस विलास, जनक पच्चीसी, जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा। प्रथम दो ग्रंथ रस निरूपण पर हैं, यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित्व सवैये बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद अब तेई तेई कवि मंडन बिछरत जदुपति, यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद्य इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी, उसमें और कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई पड़ता। यह सवैया देखिए, अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, गहराए के कारी घटा उनई, इतने ही में गागरी शीश धरी, रपट्यो पग घाट चढ़ो न गयो, कवि मंडन वह के बिहाल गिरी, चिरजीव हु नंद के बारो अरी, गई बाह गरीब ने ठाड़ी करी। छे मतिराम, ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रम में अपना ललित लाम नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और हैं, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतिराम सतसई भी बनाई जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इनके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं। मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। भाषा शब्दारंभ से सर्वथा मुक्त है, केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरत आपको लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार पृष्ठ संख्या 140 शब्द वैचित्र को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी। इनका सच्चा कवि हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भावभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए इनके मर्म स्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। रस राज और ललित ललाम मतिराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रस राज का तो कहना ही क्या, ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाक् वैदग्ध है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाच सौंदर्य नहीं आ सका है जो कवित्व सवैये की लय के द्वारा संगठित होता है। मतिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिनी चारु गोराई, आखिन में अलसानी चितौन में मंजू विलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यो ज्यो निहारिये मेरे वे नैननी, त्यो त्यो खरी निकर सी निकाई, क्यों इन आखिन सो निहंसक, वह मोहन को तन पानी पपी जय, नेकु निहारे कलंक लगै यही, गाँव बसे कहू कैसे के जी जय, होत रहे मन यो मतिराम, कहूँ बन जाए बड़ो तप की जय, वह बन माल लिए वह बनमाल हिये लगिए, अरु वह मुरली अधरा रस पीजे, केली के राति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनी घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठी के बात सुनाई, जेठी पठाई गई दुलही, हंसी हेरी रहे मतिराम बुलाई, कान के बोल पे कान न दीनी, सुगेह की देहरी पै धरी आई। दो आनंद सो आंगन मांझ विराजे, असाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुँह में हसी को ही तिया पुनी चाप सी भौह चढ़ाई, आखिन ते गिरे आसुन के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। सुबन को मेटी दिल्ली देश दलिबे को चुम, सुभट समूह निसी वाको उमहती है, कहे मती राम ताही रोकीबे को संगर में, काहो के हिम्मत हिये में उलहती है, शत्रु साल नंद के प्रताप की लपट सब, जरब गनी में बरगीन को दहती है, पति पात साह की इजती उम रावण की, राखी रैया राव भाव सिंह की रहती है। साथ भूषण, ये वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असल नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं पृष्ठ संख्या 141 के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा नाम हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी नहीं हो सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही, भक्ति और यह बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में, सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है। पुरानी वस्तु खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में उनमें से दो चार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस बोझ ने दान दे देकर अपनी इतनी तारीफ कराई, उसके चरित काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि आरंभ में कहा गया है कि शिवाजी के दरबार में पहुँचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक न सकी। पीछे भूषण को अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इनके अतिरिक्त तीन ग्रंथ और कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि वे कितनी ओजस्विनी और वीरदर्पपूर्ण है पृष्ठ पेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके दो चार कविता श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित्व इन दोनों से मुक्त है, वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। इंद्र जिमी जम्भ पर, बाड़ सु अम्भ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज हैं, पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज हैं, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। पृष्ठ संख्या 142। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहत छाती बाढ़ी मर जात जस हद हिंदुवाने की कढ़ी गई रैयत के मन की कसक सब मिटी गई ठसक तमाम तुरकाने की भूषण भनत दिल्ली पति दिल धक धक सुनी सुनी धाक शिवराज मरदाने की मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घराने की सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग ताही खरो कियो जाए जारन के नियरे जानी गैर मिसिल गुसीले गुसाधारी उर कीन्हो न सलाम न वचन बोले सी अरे भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पाते साही के उड़ाए गए जी अरे तमक ते लाल मुख सिवा को निरखी भयो स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे दारा की न दौर यह रार नहीं खजुबे की बांधिबो नहीं है केंदो मीर सहवाल को मठ विश्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को गाढ़े गढ़ लीने अरुबैरी कतलाम की ने ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को बूढ़ती है दिल्ली सो संभारे क्यों न दिल्ली पति धक्का आनी लाग्यो शिवराज महाकाल को चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार दिल्ली दहसती चितहचाही कर सती है बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा हहरी हवस भूप भीर भरकती है राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते बादशाहन की छाती धरकती है जिही फन फुतकार उड़त पहार भार कुरम कठिन जनु कमल बिदलिगो विष जल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन झारन चिकारी मद दिग्गज उगलिगो किन्हो जिहि पान पय पान सो जहान कुल कोलहु उछलि जल सिंधु खल भलिगो पृष्ठ संख्या 143 खग खगराज महाराज शिवराज जू को अखिल भुजंग मुगलत दल निगलिगो 8 कुलपति मिश्र ये आगरे के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जय सिंह बिहारी के आश्रयदाता के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। इनके रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है, पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं। द्रोण पर्व संवत 1737, युक्ति तरंगिणी 1743, नक्षिक संग्राम सार रस रहस्य 1724। अतः इनका कविता काल संवत 1724 और संवत 1743 के बीच ठहरता है। रीति काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव उन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा न हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनके ब्रज भाषा गद्य पद्य में न आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरूह हो गई है। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रज मंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है। ऐसी यह कुंज बनी छवि पुंज रह अली गुंजत यो सुख लीजय नैन विशाल हिये बनमाला विलोकत रूप सुधा भरी पीजय जामिनी जाम की कौन कहे जुग जात न जानिए ज्यो छिन छीजय आनंद यो उमग्योई रहे पिय मोहन को मुख देखी वो कीजय। 9 सुखदेव मिश्र दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कंपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में किया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। इनके 7 ग्रंथों का पता अब तक है। वृत्त विचार संवत 1728, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश संवत 1755, दशरथ राय। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं, जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निष्प्रिय विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी से विद्या अध्ययन करके लौटने पर असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची तथा डोंडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर यह सकुटुंब दौलतपुर में जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ये जैसे पंडित थे, वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। दो नमूने लीजिए, पृष्ठ संख्या 144। ननद निनारी सासुमाए के सिधारी, अहरन अंधियारी भरी सूझत न करू है। पीतम को गौण कविराज न सोहात मौन, दारू न बहत पौन लाग्यो मेघ झरू है। संग न सहेली बैस नवल अकेली, तन परी तल बेली महा लाग्यो मैंने सरू है। भई अधिरात मेरो जी अरा डरात, जागु जागु रे बटोही यहाँ चोरन को डर है। जो है जहाँ मगुनंद कुमार, तहाँ चली चंद मुखी सुकुमार है। मोती नहीं को कियो गहनो सब, फूली रही जनुकुंद की डार है। भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बाहिर जाहिर होती न दार है। जो नसी जोन है गई मिली यो, मिली जाती जो दूध में दूध की धार है। 10 कालिदास त्रिवेदी। ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। जान पड़ता है कि संवत 1745 वाली गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। गढ़न गढ़ी से गढ़ी, महल मढ़ी से मढ़ी, बीजापुर ओप्योदल मलि सुघराई में। कालिदास कोप्यो वीर औलिया अलमगीर, तीर तरवारी गही पुहुमी पराई में। बूंद ते निकसी मही मंडल घमंड मछी, लोहो की लहरी हिमगिरी की तराई में। गाड़ी के सुझंडा आड़कीनी बाद साह ताते, डकरी चमुंडा गोलकुंडा की लड़ाई में। कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया। यह नायिका भेद और नक्षिक की पुस्तक है। 32 कवित्वों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद नाम का एक कोई और ग्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह ग्रंथ कालिदास हजारा बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेकर संवत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित हैं। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दूल्हा भी बड़े अच्छे कवि हुए। ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्व इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। दो कवित्व नीचे दिए जाते हैं। चूमो कर कंज मंजू अमल अनूप तेरो, रूप के निधान कान्ह मो तन निहारी दे। कालिदास कहे मेरे पास हर हेरी हेरी, माथे धरी मुकुट लकुट कर डारी दे। कुमार कन्हैया मुख चंद को जुन्हैया चारु, लोचन चकोरन की प्यासन निवारी दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उरझी है नक बेसर संभारी दे। हाथ हंसी दिनो भीती अंतर परसी प्यारी, देखत ही छकी मखी कान्हर प्रवीण की। पृष्ठ संख्या 145। निकस्यो झरो के मांझ बिगस्यो कमल सम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनीन की। कालिदास तैसी लाल मेहंदी के बुंदन की, चारु नख चंदन की लाल अंगुरीन की। कैसी छवि छजती है छाप और छलान की, सु कंकन चुरीन की जड़ाओ पहुँची न की। 11 राम। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में हैं। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। इनका एक कवित्त नीचे दिया जाता है। उमाड़ी घुमाड़ी घन छोड़त अखंड धार, चंचला उठती तामे तरजी तरजी के, बरही पपीहा भेकपिक खग टेरत है, धुनी सुनी प्राण उठे लरजी लरजी के, कहे कवि राम लखी चमक खदोतन की, पीतम को रही मैं तो बरजी बरजी के, लागे तन तावन भिनारी मन भावन के, सावन दुवन आयो गरजी गरजी के। 12 निवाज। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह पंक्ति छोड़ी थी। भली आज कली करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त निवाज। शिव सिंह ने निवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। दो और निवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत निवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा चौपाई सवैया आदि छंदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। दो सवैये इनके उद्धृत किए जाते हैं। देख हमें सब आपुस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये घर हाई लुगाई सब निसी द्योस निवाज हमें दहती हैं, बाते चवाव भरी सुन के रिस आवती पैच पुवे रहती हैं, कान पियारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हसीबो सहती हैं। आगे तो किन्ही लगा लगी लोयन, कैसे छिपे अजहूं जो छिपावती, तू अनुराग को शोध कियो ब्रज की बनिता सब यो ठहरावती, कौन संकोच रहो है निवाज जो तू तरसे उनहु तरसावती, बावरी जो पै कलंक लग्यो तो निसंक वह क्यों नहीं अंक लगावती। 13 देव। ये इटावा के रहने वाले सनाढ्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्य कुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष की कही है। इस हिसाब से इनका जन्म पृष्ठ संख्या 150 संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने, या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेमचंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक देशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा का अनुभव उन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हों यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया जिन लाखन खरची रची आखर खरीदे हैं। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है। 1 भाव विलास, 2 अष्टयाम, 3 भवानी विलास, 4 सुजान विनोद, 5 प्रेम तरंग, 6 राग रत्नाकर, 7 कुशल विलास, 8 देवचरित, 9 प्रेम चंद्रिका, 10 जाति विलास, 11 रस विलास, 12 काव्य रसायन या शब्द रसायन, 13 सुख सागर तरंग, 14 वृक्ष विलास, 15 पावस विलास, 16 ब्रह्म दर्शन पचीसी, 17 तत्व दर्शन 25, 18 आत्म दर्शन 25, 19 जग दर्शन 25, 20 रसानंद लहरी, 21 प्रेम दीपिका, 22 नखशिख, 23 प्रेम दर्शन। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने काल यापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है, वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्य उपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति का एक नया मालूम होता है, जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है, अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी, वह संस्कृत की रस तरंगिणी से जहाँ से और बातें ली गई हैं लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 पृष्ठ संख्या 147 संचार उपलक्षण मात्र हैं। संचारी और भी कितने हो सकते हैं। अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन, यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझौवल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है, यहाँ जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दूरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। सुनो के परम पद, ऊनो के अनंत मद, नूनो के नदी सुनद इंदिरा झुरे परी, महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगीसन की, ईसन की सिद्धि ब्रजवीथी बिथुरे परी, भादो की अंधेरी अधिराती मथुरा के पथ, पाय के संयोग देव देव की दुरे परी, पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म रसी, जसुदा के कोर एक बार ही कुरे परी, दार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगुला सोहत न छबि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे होलसावे कर तारी दे, पूरी त पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नायिका लता ने सिर तारी दे, मदन महीप जुक बालक बसत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। सखी के संकोच गुरु सोच मृगलोचनी, परसानी पिय सो जो उन नेको हंसी छुओ गात। देव वे सुभाय मुस्काय उठी गए यहाँ, सिसकी सिसकी निसी खोई रोय पायो प्रात। पृष्ठ संख्या 148। को जाने री वीर बिन विरही विरह बिथा, हाय हाय करी पछिताय न कछु सुहात। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चली झुलबो को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठो उठी गई सोनी गोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी या जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वही छाई बूंदे मेरी आंसू वे दृगन में। सासन ही में समीर गयो अरु, आसन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो अरु, भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिये मेली बेई की आस के, आसहु पास आकाश रयो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जू हरी। जब ते कुवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। तब ही ते देव देखी देवतासी हंसती सी, रिझती सी खिजती सी रूठती रिसानी सी। छोही सी छली सी छीनी लीसी सी, छीन लीनी सी छकी सी छीन। जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी, बीधी सी बंधी सी विष बूढ़ती बिमोहती सी। बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। देव मैं शीश बसायो सने हसो, बाल मृगम्मद बिंदु के भाख्यो। कंच की मैं चुपर्यो करी चोव, लगाय लियो उरसो अभिलाख्यो। लय मखतूल गुहे गहने, रसमूर तिवंत सिंगार के चाख्यो। सांवरे लाल को सांवर रूप में, नैनन को कजरा करी राख्यो। धार में धाय धसी निर्धार वे, आय फसी उकसी न धधेरी। री अंगराय गिरी गहगी, गिही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितय भई चेरी। बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, अखियां मधुकी मखियां भई मेरी। 14. श्रीधर या मुरलीधर, ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंग नामा ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें फर्रुख सियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। 15. सुरति मिश्र, यह आगरा के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है। सुरति मिश्र कनौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सत्सई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्ला खान नमक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। पृष्ठ संख्या 149। इन्होंने बिहारी सत्सई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची हैं, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने वैताल पंचविंशती का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं। 1. अलंकार माला, 2. रस रत्नमाला, 3. रस सरस, 4. रस ग्राहक चंद्रिका, 5. नक्षिक, 6. काव्य सिद्धांत, 7. रस रत्नाकर। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे क हिमसो हर के हाससो जस मालोपम ठानी। 2. सो असंगति कारण अवर कारज औरे थान, चली अहि श्रुति आ नहीं दसत नसत और के प्राण। इनके ग्रंथ सब नहीं मिले हैं, जितने मिले हैं उनमें से अच्छे साहित्य मर्मक और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्षिक से इनका एक कविता दिया जाता है। तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है। को न समान जाहि कीजे उपमान, अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है। नेकु दर्पण समता की चाह करी कहूँ, भय अपराधी असोचित धारियत है। सुरति सोयाहित जगत बीच आजहूँ लो, उनके बदन पर छार डारियत है। 16. कविंद्र उदयनाथ, ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1700 36 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोगलीला नामक इनकी दो और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना, अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिन रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी अच्छी करते थे। इनके दो कवित्व नीचे दिए जाते हैं। शहर मंझा रही पहर एक रागी जय है, छोर पे नगर के सराय है उतारे की, कहत कविंद मग माजही परेगी सांझ, खबर उड़ानी है बटोही द्वैक मारे की, घर के हमारे परदेश को सिधारे याते दया के विचारी हम रीति राह बारे की, उतरो नदी के तीर बर के तरे ही तुम, चौको जनी चौकी तहां पाहरू हमारे की। राजे रसमेरी तैसी बरखा समय री चढ़ी, चंचला नचरी चक चौंधा कौंधा बारे री, व्रति व्रत हारे हिये परत फुहारे, कछु छीर कछु धारे जलधर जलधार सी, भनत कविन कुंज भवन पौन सौरभ सो, पृष्ठ संख्या 150, काके न कपाये प्राण परहत पारे री, काम कंदुका से फूल डोली डोली डारे मन, औरे किए डारे ये कदम्बन की डारे री। 17 श्रीपति। ये काल्पी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं: कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार के साथ किया गया है और दोषों के उदाहरणों में केशव दास के बहुत से पद रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वतंत्र प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्य अंगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, इससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली हैं। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठ शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जल भरे झूमे मानो भूमे परसत आए, दसहु दिशा न घूमे दामिनी लये लये, धुरी धार धूमरे से धूम से धुंधारे कारे, धुरवान धारे धावे छवि सो छये पये छये छये, श्रीपति सुकवि कहे घेरी गह राही, तकत अतन तन तावते तये तये, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, कादर करत मोहि बादर नये नये। सारस के नादन को बाद ना सुनात कहूँ, नाहा कही बकवाद दादुर महा करे, श्रीपति सुकवि जहाँ ओज ना सरोजन की, फूल ना फूलत जाहे चित्त द चहा करे, बकन की बान की बिराजती है राजधानी, काई सो कलित पानी फेरत हहा करे, घुंघन के जाल जामे नरई सेवाल ब्याल, ऐसे पापी ताल को मराल ले कहा करे, घुंघट उदय गिरिवर त निकसी रूप, सुधा सो कलित छवि कीरति बगारो है, हरित हरि न डिठोना श्याम सुख सील बरसत, करसत शोक अति तिमिर बिदारो है, श्रीपति बिलो की सौती बारे जमलिन होत, हरषि कुमुद फूल नंद को दुलारो है, रंजन मदन तन गंजन बिरह बीबी, खंजन सहित चंद बदन तिहारो है। पृष्ठ संख्या 151। 18 वीर। ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1789 में लिखा। कविता साधारण है। वीर रस का कविता देखिए। अरुण बदन और फर के विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रुख करे, प्रबल प्रचंड निशिचर फिर आए, धूरी चाहत मिलाए दसकंद अंध मुख को, चमके समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दीह दुख को, बलकी बलकी बोले वीर रघुबीर धीर, मही पर मेड़ी मारो आज दस मुख को। 19 कृष्ण कवि। ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जय सिंह के मंत्री राजा आया मल्ल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जय सिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जय सिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सवैये देखिए। शीर्ष मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उरमाल, यही मानिक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। छबिसो फबिशीष किरीट बन्यो, रुचिसाल हिये बनमाल लसे, कर कंजही मंजुरली मुरली, कछनी कटि चारु प्रभाव रसे, कवि कृष्ण कहे लखी सुंदर मूरति, यो अभिलाष हिये सरसे, वर्णंद किशोर बिहारी सदा, यही बानिक में हिये मांज बसे। थोरे ही गुण रीजते बिसराई वह बानी, तुमहु कान मनो भय आजु काल के दानी। वह अति आरत मह बिनती, बहु बार करी करना रस भीनी, कृष्ण कृपा निधि दीन के बंधु, सुनो असुनो तुम काहे को कीनी, रीझते रंचक ही गुण सो, वह बानी बिसारी मनो अब दीनी, जानी परी तुमहु हरिजु, कलिकाल के दानी न की गति लीनी। 2 रसिक सुमति। ये ईश्वरदास के पुत्र थे और सन 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवल्यानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद्य रचना साधारणतः अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनीक अरि सो न बस, अरि हितु ही दुख देय, रविसो चले न कंज की, दीपति शशि हरि लेय। 21 गंजन। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया जिसमें भाव भेद रस भेद के साथ षट ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। पृष्ठ संख्या 152। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है जिससे जान पड़ता है कि उनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा है। इसे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा विशिष्ट और प्रांजल नहीं। एक कवित्व नीचे दिया जाता है। मीना के महल जरबाफ दर पर्दा है, हलबी फनसून में रोशनी चिराग की, गुलगुली गिलम गर कवाव पग होत, जहां बिछी मसनद लालन के दाम की, केती महताब मुखी खचित जवाहिरन, गंजन सुकवि कहे बौरी अनुराग की, एतमाद दौला कमरुद्दीन खां की मजलिस, चिशिर में गिशम बनाई बड़ भाग की। 22 अली मुहिब खां प्रीतम। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के आरंभ में आ गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रहते हुए जब हम अपने साहित्यिक क्षेत्र में हास के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल्लगी बहुत बंधी सी चली आई। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर यही हास्य रस के आलंबन रहे। खान साहब ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है, कमला कमले शेते हरष शेते हिमालये, क्षीराब्धो च हरिष शेते मन्ने मत्कुण शंकया। शूद्र और महान के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही, इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफी है। खटमल बाईसी के दो कविता देखिए। जगत के कारण करण चारो वेदन के, कमल में बसे वह सुजान ज्ञान धरी के, पोषण अवनी दुख शोषण तिलोकन के, सागर में जाए सोए शेष सज करी के, मदन जरायो जो संहारे दृष्टि ही में सृष्टि, बसे हैं पहाड़ चेऊ भाजी हर बरी के, विधि हरि हर और इन तिन कोऊ तेऊ, खाट पे न सोवे खटमल न को डरी के, बाघन पे गयो देखी बनन में रहे छपी, सापन पे गयो ते पताल ठौर पाई है, गजन पे गयो धूल डारत है शीस पर, बैदन पे गयो काहू दारू ना बताई है। पृष्ठ संख्या 153। जब हराए हम हरि के निकट गए, हरि मुसो कही तेरी मति भूल छाई है, को ना उपाय भटकत जनी डोले सुन, खाट के नगर खटमल की दुहाई है। 23। दास, भिखारी दास, ये प्रतापगढ़ अवध के पास टयोंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास, पितामह वीर भानु, प्रपितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे, जिनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। रस सारांश संवत 1799, छंदार्णव पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में, छंद प्रकाश शतरंज शतिका अमर प्रकाश संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदूपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदरगंज द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर संवत 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद रस अलंकार रीति गुण दोष शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनके विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकिया का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा, श्रीमानन के भवन में भोग्य भामिनी और तिनहू को सुकिया हमें गने सुकवि सिरमौर, पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती है। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। लीला विलास विच्छति विवोक किलकिंचित मुट्टायित कुट्टमित विभ्रम ललित विहृत मद तपन मौग्ध्य विक्षेप कुतूहल हसित चकित और केली। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यह चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका है। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है, श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नाइन, धोबिन सब आ गईं। पर दास जी ने रसाभास के डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के पृष्ठ संख्या 154 रूप में रखा है। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरइन सब प्रकार की दूतियां मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस हैं। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूच के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र अपेक्षित होता है। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से, चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो, कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए। वाही घरी ते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई, दास न लाज को साज रहे, न रहे तनको घर काज की घाई, वहाँ दिख साध निवारे रहो, तब ही लो भटू सब भांति भलाई, देखत काम न चेत रहे, नहीं चित रहे, न रहे चतुराई, नैनन को तरसय कहाँ लो हियो बिरगाही मैं तय, एक घरी न कहूँ कल पय, कहाँ लगी प्राणन को कल पय, आवे यही अब जी में विचार, सखी चली सौत के घर जय, मान घटे ते कहा घटी है, जूपे प्राण प्यारी को देखन पय, उधो तहाई चली ले हमें, जहाँ कुबरी कान बसे एकठोरी, देखिए दास अघाय अघाय, तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी, कुबरी सो कछुपाइये मंत्र लगाइए, कान सो प्रीत की डोरी, कुबरी भक्ति बढ़ाइए, बंदी चढ़ाइए, चंदन बंदन रोरी, कड़िके निशंक पैठी जाति झुंड झुंडन में, लोगन को देखी दास आनंद पगती है, दौरी दौरी जही तही लाल करी डारती है, अंक लगी कंठ लगी बे को उमगती है, चमक झमक बारी ठमक जमक वारी, रमक तमक वारी जाहिर जगती है, राम असी रावरे की रन में नरन में, नीलज बनिता सी होरी खेलन लगती है, अब तो बिहारी के वे बानक गैरी तेरी, तन दूती केसर को नैन कश्मीर भो, शौन तो वो वानी स्वाति बूंदन के चातक में, सासन को भरी वो द्रुपद जा को चीर भो, हिय को हरष मरु धरणी को नीर भो, रिजियरो मनोभव सरन को तुनीर भो, एरी बेगी करी के मिलापु थिर थापु न तो, आपु अब चहत अतन को शरीर भो, अखियां हमारी दईमारी सुदी बुधिहारी, मोहु ते जुनियारी दास रहे सब काल में, पृष्ठ संख्या 155। कौन कहे ज्ञान काहि सौपत सयाने कौन, लोक ओक जाने ये नहीं है निज हाल में, प्रेम पगी रही महामोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाल में, लाज को अंचक कुल धर्म पचक वृथा, बंधन सचक भई मगन गोपाल में।